તારીખ 1/1/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 49 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 70.
શ્રી સમયસર પરમાગમ જીવ જીવ અધિકાર કા 49 ગાથા ऐसे तो जीव अधिकार का अस्थि से निरूपण 38 गाथा तक चला था, 39 गाथा से जीव तत्व का नास्ति से अधिकार चलता है। मैंने जीव है वो जीव नहीं, और जीव और अजीव हमेशा भिन्न होते हैं, कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होते। गाथा का हेडिंग है, अब शिष्य पूछता है कि यो अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, तो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। बार बार आचार्य महाराज ने जीव के स्वरूप के विषय में प्रश्न उठाया है। प्रश्न आचार्य महाराज ने तो समझाने के लिए उठाया है, अधिक स्पष्टता करने के कारण उठाया है, खुद को प्रश्न है ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ अभिप्राय यह है कि जीव को, जीव का स्वरूप जिसको जानना है, उसको उस विषय में पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा जीव का स्वरूप कहने पर भी समझ में नहीं आता, इसलिए जिसको जिज्ञासा है उसको समझने की योग्यता तत्काल होती है। जिज्ञासा की भूमिका में समझने की योग्यता अच्छी होती है, क्योंकि विचार में, विचार की भूमिका में उस वक्त अवकाश होता है कि मेरा स्वरूप क्या है, वो जानने के लिए खाली जगह अवकाश उत्पन्न होता है। इसलिए जिज्ञासा के काल में अगर कहा जाए, समझाया जाए, तो अच्छी तरह समझ सके, ऐसी उस वक्त की योग्यता होती है। यही अभिप्राय से सत्शास्त्रों में ज्ञानी आचार्यों प्रश्न उठाते हैं, इसी कारण से प्रश्न उठाते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है, परमार्थ स्वरूप, मूल स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न उठाया है। यह गाथा कुंदकुंदाचार्य के सभी आगमों में है और धवला में भी है। अरसम अरुवम गंधम वत्तम चेदना गुणम सदम जान अलिंग गहनम जीवम अनिदिठ संथानम हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह से लक्षण से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान, अस्थि से अकेला चेतना गुण लिया है और नास्ति से बहुत बातें लिया है। नास्ति से रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, चार तो पुद्गल के मुख्य गुण लिए हैं और इंद्रिय ज्ञान में आता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए अव्यक्त है, ऐसा पांचवा कहा नास्ति से। छठा, जिसका कोई आकार नहीं है, एक आकार में जीव दिखा नहीं जाता, जैसे परमाणु एक आकार होता है, आकाश धर्मास्ति धर्मास्ति कालाणु एक आकार होता है, उसका आकार बदलता नहीं, जीव एक आकार में नहीं रहता, जीव का आकार बदलता रहता है, इसलिए कोई फिक्स ऐसा आकार वाला होए तो जीव, वरना जीव नहीं, ऐसा कह सकते नहीं है, इसलिए इसका कोई संस्थान में आकार नहीं कहा जाता, ऐसा बात है। आकार नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन कोई एक आकार है, दूसरा आकार जीव का है ही नहीं, उस प्रकार नहीं है। आकार तो संसार अवस्था में स्वदेह प्रमाण होता है, तो चींटी होती है तो उसके आकार से उनके प्रदेश होते हैं, हाथी होता है तो उनका आकार हाथी जैसा होता है, मनुष्य होता है तो मनुष्य जैसा होता है, छोटा मोटा बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कोई एक आकार, खास आकार, उसी को ही जीव का स्वभाव आकार कहे ऐसा नहीं है। और सिद्ध अवस्था में जो भी चरम शरीर है उससे कुछ न्यून आकार में रहता है, होता है मनुष्य आकार, फिर भी एक एक सा नाप नहीं होता। ऋषभदेव भगवान का चरम शरीर 500 धनुष का था, अभी सिमंदर भगवान का भी 500 धनुष का है, और महावीर स्वामी का 7-8 का था एक धनुष, कहाँ एक धनुष 7-8 का एक धनुष बताया जाता, एक धनुष और 500 धनुष, इतना छोटा बड़ा आकार होता है मनुष्य का भी। तो पिछला जो अंतिम शरीर होता है उसको चरम शरीर कहते हैं शास्त्र भाषा में, वो आखिर का शरीर है, उससे कुछ न्यून कुछ कम इतना आकार में सिद्ध अवस्था में मनुष्य आकृति के रूप में सिद्धात्माएं अनंत विराजमान है अभी, इसलिए उनको कोई खास आकार है ऐसा नहीं कहा जाता। ये तो हुए शब्द का अर्थ। अब आचार्य महाराज एक एक विशेषण में 6 अर्थ निकालेंगे, क्या एक विशेषण में 6 अर्थ निकालें, जैसे पहले जीव रस रहित है, पहला शब्द अर्थ पड़ा है, भूल गया था मैं, परसम अरूपम अगंधम, तो उसी प्रकार अर्थ किया है, शब्दार्थ मूल गाथा के अनुसार कहा है। तो पहले रस नहीं है, तो रस नहीं है वो किस प्रकार से रस नहीं है आत्मा में, जो निशेष है पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है। रस है तो पुद्गल का धर्म है, पुद्गल का गुण है, जीव का गुण नहीं है, और पुद्गल द्रव्य का गुण होने से वो पुद्गल जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य बिल्कुल भिन्न होने से जीव का गुण नहीं है, इसलिए पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न होने से आत्मा में जीव में रस गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए आत्मा अरस है, आत्मा अरस है, रस बिना का है, क्योंकि रस नाम का जो गुण है वो पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता, और पुद्गल से वो भिन्न है, इसलिए आत्मा रस है। दूसरा कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है, रस वाला द्रव्य तो नहीं है, रसगुण वाला द्रव्य तो नहीं है, लेकिन स्वयं रसगुण भी नहीं है। द्रव गुण दोनों लिया, स्वयं रसगुण रूप नहीं होने से, आत्मा स्वयं रसगुण रूप नहीं होने से आत्मा अरस है। तीसरा कि परमार्थ से उद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय के आलंबन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। ये बात थोड़ी कठिन पड़ेगी। पहले दो बात कही वो तो समझने में सुगम है, लेकिन द्रव्येंद्रिय में जिह्वा इंद्रिय है वो रस को चखती है, जीभ से रस चखने में आता है, हर एक का सर्व सामान्य अनुभव है। आचार्य महाराज यहाँ इस बात की ना देते हैं, क्या है? जीव से आत्मा रस नहीं चख सकता, क्या जीव से आत्मा रस नहीं चखता, नहीं चख सकता? क्यों? कि आत्मा जीव का स्वामी नहीं, उस लिए लॉजिक दिया है। क्यों नहीं चख सकता? कि आत्मा जीव का स्वामी नहीं है। किसी को कभी ऐसी बीमारी हो जाती है तो ऐसा बीमार आदमी ऐसा बोलता है कि जीव तो है, मुंह में जीव तो अवश्य है, लेकिन कोई स्वाद नहीं आ रहा है। क्या स्वाद नहीं आता? ऐसा कुछ हो गया है कि स्वाद नहीं आता? कुछ भी खाते कोई स्वाद ही नहीं लगता, स्वाद मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे बहुत वो खाते हैं ना तमाकू मावा खाते, बहुत सारी जिंदगी खाते तो उसका ऐसा बिगड़ जाता, उनको वही चीज के अलावा दूसरा स्वाद उनको पता ही नहीं पड़ता। अगर जीव इसका स्वामी होता तो ऐसा होने देता नहीं, ऐसा नहीं होने देता। क्या कहा? परमार्थ से मैंने वास्तविक रूप से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी जीव को नहीं है। जीव और पुद्गल भिन्न होने से पुद्गल का स्वामित्व जीव को नहीं है, और पुद्गल जीव के अधीन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि पुद्गल जीव के अधीन नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय जीव है, वो जीव है, वो द्रव्येंद्रिय है, उसके आलंबन से, आलंबन मैंने एकत्व को प्राप्त करके भी रस नहीं चखता। जीव के साथ वो एक जीव और आत्मा एक हो जाए तो रस को चख सके, वरना वो रस को चख सकता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि हम तो हमेशा रस को चखते हैं, दाल में नमक कम है तो कहेंगे कि भाई इसमें नमक भूल गए हैं, चाय में चीनी नहीं डाली तो भाई पता चल जाता है, हम तो चख सकते हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझना क्या है इसमें? वो कहते हैं कि तेरा स्वभाव से तू देख। यहाँ आचार्य महाराज का कहने का अभिप्राय यह है कि तेरा ऐसा स्वभाव है कि परमार्थ से, इसलिए कहा परमार्थ से मैंने स्वभाव से, तू अपना ज्ञान का आस्वादन कर सकता है लेकिन पर पदार्थ के रस का आस्वादन नहीं कर सकता है। रस को लेना, रस को खाना, रस को चखना, रस को भोगना, वो सब एक अर्थ है। तो क्या पुद्गल पदार्थ के खाद्य पदार्थ हैं, पीने लायक पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, खाने लायक को खाद्य पदार्थ कहते हैं। उसको आत्मा खा सकता है? खा सकता है क्या? कि नहीं खा सकता। उसको आत्मा भोग सकता नहीं है, ऐसी बात है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में जैसा रस है ऐसा रस का प्रतिभास हो सकता है, लेकिन आत्मा उस रस को, रस के साथ एकत्व को प्राप्त करके, आलंबन से लिया ने, द्रव्येंद्रिय के आलंबन से, स्वभाव से द्रव्येंद्रिय का आलंबन नहीं ले सकते। क्या? विभाव से द्रव्येंद्रिय का आलंबन लेने को जाता है, फिर भी दोनों एक तो हो सकता नहीं है, सिर्फ विभाव होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक तो हो सकता नहीं।
मैं ऐसा दिखाई क्यों देता है?
कहते हैं कि ये जो अनुभव है, ये जो एक जो अनुभव है वो झूठा अनुभव है। क्या? मैंने रस को चाखा, वो झूठा अनुभव है। अगर सच्चा अनुभव होता तो खाने से तृप्ति हो जाती है, लेकिन किसी जीव को कभी तृप्ति हुई नहीं। मैं खा सकता हूँ ऐसा मानकर, ऐसा समझकर वो कुछ भी करता है, मैंने खाता है ऐसा कहते हैं, फिर भी उसको तृप्ति होती नहीं। क्यों तृप्ति नहीं होती? क्यों खा ही नहीं सकता? अगर खाता खावे तो तृप्ति होवे, लेकिन एक परमाणु और एक परमाणु का रस गुण या रस की पर्याय आत्मा को छुती नहीं, न आत्मा का कोई गुण, ज्ञानादि कोई गुण एक परमाणु के रस गुण, रस द्रव और रस पर्याय को छूता नहीं है, दोनों अपने अपने में रहता है, ये कहने का अभिप्राय है। जी हाँ, द्रव मैंने पुद्गल द्रव लेना, द्रव मैंने पुद्गल द्रव, भाव इंद्रिय मैंने आत्मा का भाव, जो द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से, द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से, द्रव्य इंद्रिय द्वारा जो प्रवर्तता है, ऐसे जीव के परिणाम को भावेंद्रिय कहते हैं। और पुद्गल की जो रचना है शरीर के अवयव रूप, उनको द्रव्य इंद्रिय कहने में आता है, वो पुद्गल द्रव्य लेना।
जान सकते हैं रस
ऐसा है, यहाँ पे अभी आएगा भावेंद्र का बात क्या है वो तो जो प्रकरण चले उसकी तो बात चले ने, अभी भावेंद्र का बात लेंगे, यहाँ थोड़ी बात दूसरे ढंग की है। जो बात चालू है, चालू है मैंने, हम जो दुनियादारी में जो समझते हैं व्यवहार में, ऐसी बात यहाँ नहीं है, ऐसी लौकिक बात नहीं है, लेकिन कोई अलौकिक बात है। आचार्य भगवान जीव का स्वरूप दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। प्रश्न क्या चला है कि परमार्थ स्वरूप टंकोत्कीर्ण जीव कैसा है? अगर जीव द्रव्येंद्रिय वाला होता, भावेंद्रिय वाला होता परमार्थ स्वरूप से, तो ऐसा ही रहता क्या? प्रश्न तो उठाया नहीं कि परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है। तो द्रव्येंद्रिय का स्वामी नहीं है क्या? उद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसलिए उसको द्रव्येंद्रिय हमेशा नहीं होती। होती है क्या? जिसको चार इंद्रिय है उसको रसना इंद्रिय नहीं होती, पहले स्पर्श इंद्रिय होती, फिर कर्ण इंद्रिय आती, फिर नास फिर घ्राण इंद्रिय आते, फिर रसना इंद्रिय आते, फिर चक्षु इंद्रिय आते, फिर रसना इंद्रिय आते, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, फिर रसना, ऐसा वो आखिर में चौथी इंद्रिय मिलती है, पांचवी इंद्रिय मिलती है। तो जो चौरेन्द्रिय है, चार इंद्रिय वाला है, उसको रसना इंद्रिय नहीं होती, द्रव्य से भी और भाव से। हाँ, रस रस उल्टा है, यहाँ से पहले से होती, पहले से होती। हाँ, एक द्रव्य, एक इंद्रिय होती है उसको स्पर्श इंद्रिय होती, हाँ, दो इंद्रियों को फिर रसना इंद्रिय चालू हो जाती है, फिर खाने का आहार ग्रहण कर लेता ना, वहाँ से मुंह चालू होता है उनका। एक इंद्रियों को मुंह नहीं होता, दो इंद्रिय वाले को मुंह होता है। तो एक इंद्रिय बन जाता है तो उसको द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों नहीं होती। अगर जीव का स्वरूप होता तो ऐसा कभी बनता नहीं है, इसलिए वो भावेंद्रिय भी जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसे लेंगे हम, क्या विचार करते हैं, हमारी वर्तमान अवस्था से विचार करते हैं, क्या है कि जीव का स्वरूप रसना इंद्रिय वाला, द्रव्येंद्रिय वाला भी नहीं और भावेंद्रिय वाला भी नहीं। अभी भावेंद्रिय है इसलिए हम विचार करते हैं, लेकिन उसका परमार्थ स्वरूप ऐसा नहीं है, मूल स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मूल स्वरूप होवे वो तो टंकोत्किरण में हमेशा हमेशा रहवे। टंकोत्किरण वाला जैसा चला नहीं जाता, विनाश नहीं होता, ऐसा स्वरूप का विनाश नहीं होता। तो रसना इंद्रिय का नाश भी होता है, द्रव्य का और भाव का दोनों का नाश होता है एक इंद्रिय पणे में, स्पर्शेंद्रिय होती है एक इंद्रिय जीव को, तो इसलिए वो जीव का मूल स्वरूप नहीं है, ऐसा लेना है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय के आलंबन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। द्रव्येंद्रिय का आलंबन जीव ले नहीं सकता, परमार्थ स्वरूप जीव है, स्वभाव से जीव को देखा जाए तो द्रव्येंद्रिय का आलंबन लेवे, ऐसा इनका स्वभाव ही नहीं, क्या ऐसा इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए जीव ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं या समझते हैं, मानते हैं कि हमने तो हमारी जीव से अनेक प्रकार के स्वाद चखे, तो आचार्य महाराज कहेंगे कि तुमको तेरा तुम्हारा स्वरूप क्या है वही तुमको पता नहीं है, जैसा तुम्हारा स्वरूप नहीं है ऐसा तुम स्वीकार करते हो। क्या स्वीकार करते हो? कि जैसा तुम्हारा स्वरूप नहीं है ऐसा तुम स्वीकार करते हो, अन्यथा स्वीकार करते हो, मतलब मूल स्वरूप का स्वीकार नहीं करते, यही स्वरूप का ज्ञान हुआ, यही स्वरूप का अश्रद्धान हुआ। वो तीसरा हुआ, चौथा, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षायोपशमिक भाव का भी अभाव होने से वो भावेंद्रिय के आलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। क्या? स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो, मूल स्वरूप से देखा जाए तो, मूल स्वरूप तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप स्वभाव है, उक्षाय उपशमिक भाव भी उसमें नहीं है, इसका भी उसमें अभाव है, उदय भाव का भी उसमें अभाव है और क्षायिक भाव का भी उसमें अभाव है और उपशम भाव का भी उसमें अभाव है। यहाँ तो जो भावेंद्रिय है वो क्षयोपशम भाव रूप है। क्या? पांचों इंद्रिय और छठा मन नौ इंद्रिया। ये छों इंद्रियों का जो भाव है जीव के परिणाम वो क्षोभ शमिक भाव रूप है, और ये क्षोभ सम भाव है उनको भी परमार्थ में तो विभाव कहने में आता है, उसको स्वभाव कहने में नहीं आया, क्योंकि वो स्वभाव है ही नहीं और स्वभाव ऐसा है भी नहीं। क्या है कि अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, क्या अब क्या क्या कहते हैं आचार्य महाराज कि तुम अपनों अपने को अपने स्वभाव दृष्टि से देखो तो क्षोभसम एक भाव ही नहीं है, आत्मा को क्षोभसम भाव ही नहीं है। जब आत्मा को क्षोभसम भाव नहीं है, इसका अभाव है, तो फिर आत्मा को भावेंद्रिय भी नहीं है, रसना इंद्रिय क्या एक भी नहीं है, पांच इंद्रिय और छठा मन वाला कोई भी क्षोभ संभाव आत्मा के स्वभाव में नहीं है। इसलिए भावेंद्रिय के आलम मन से रस रस को चखना ऐसा भी बनता नहीं है स्वभाव में। इसलिए आत्मा मूल स्वरूप से ए रस रूप है, रस रूप नहीं है लेकिन अरस रूप अरस स्वभावी है। वास्तव में क्या होता है कि भावेंद्रिय भी क्षोभसम ज्ञान है, और क्षोभसम ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपणा के कारण अनेक प्रकार का रस का ज्ञान होता है। क्या रस का ज्ञान होता है, लेकिन वो क्षोभसम ज्ञान जो भावेंद्रिय रूप प्रवर्ता है वो क्षोभसम ज्ञान बहिर्भाव है। कैसा है, जीव का बाह्य ज्ञान है, और जैसा बाह्य क्षोभसम ज्ञान है ऐसा जीव का मूल स्वरूप नहीं है। इसलिए यहाँ अरसपना बताने के माध्यम से जीव के बाह्य क्षोभसम का निषेध किया गया है। द्रव्येंद्रिय तो खैर पुद्गल के परिणाम है, वो तो पुद्गल की रचना है, ये पुद्गल का अवयव है, उसमें तो जीव है ही नहीं, जीव का कोई एक अंश भी उसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल विजातीय पदार्थ है, उसकी पदार्थ की जाति ही विरुद्ध है। लेकिन जीव का क्षोभसम ज्ञान का क्या, जो इंद्रियों के माध्यम से जो क्षोभसम ज्ञान वर्तता है ऐसा जीव का स्वभाव है ही नहीं, और ऐसे परिणाम रूप परिणमना, क्या ऐसे खाते वक्त स्वाद लेने के परिणाम रूप परिणमना वो जीव का धर्म नहीं है, वो जीव का स्वभाव नहीं है, उसका आदर करना चाहिए नहीं उसका निषेध करना चाहिए, आदर नहीं करना चाहिए लेकिन उसका निषेध करना चाहिए। हम देखिए जिसको बहुत खाने का शौक होता है ना, अनेक प्रकार के भोजन बनाने के खाने का शौक होता है, वो अपने को कैसा मानता है और मूल स्वरूप कैसा है, मूल स्वरूप में कितना अंतर है कि एक शुभ संभाव जिसमें रस लेने का स्वाद लेने का ज्ञान होवे राग होवे वो जीव का स्वरूप ही नहीं। ऐसे परिणामों का आलंबन लेना, एक और बात ये इसमें रखी है कि ऐसे परिणामों का आलंबन लेना कि मैं अच्छी तरह स्वाद ले सकता हूँ, मेरा इतना विचक्षण है कि दूसरों को तो पता ही नहीं चले ये चीज़ अच्छी है कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी कितनी अच्छी बढ़िया है या बढ़िया नहीं है वो मैं ही बता सकता हूँ, दूसरे लोग बता सकते हैं नहीं। या स्वाद लेने वक्त वो आलंबन लेता है, उस भाव का आलंबन लेता है कि मैं ऐसा स्वाद लेने वाला, तो कहते हैं कि ये तेरा मिथ्या भाव है, तेरा ऐसा स्वरूप है ही नहीं। तुम ऐसा स्वरूप वाला है ही नहीं मूल में। इसलिए भावेंद्रिय के द्वारा जीव का मूल स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा रस नहीं चखता है, इसलिए आत्मा रस है। ये दुनिया से बिल्कुल विरुद्ध बात है, सारे जगत से है। सुधरी सो गयो अड़दियों ने बदाम पाक छे वो रो सालम पाक हो बदाम पाक हो वो तो जैसा है वैसा उसमें रहा, लेकिन उसको चखने के काल में तू जैसा है वैसा नहीं रहता है, तू बिगड़ जाता है। इसका क्या बादाम पाक को ठीक रखने को जाएगा तो तू बिगड़ जाएगा क्या, तेरा स्वाद बिगड़ जाएगा। इसका स्वाद लेने को जाएगा तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगा। तेरा स्वाद क्या है कि आनंदामृत नित्य भोजी, आनंद का भोजन करना, आनंद का स्वाद लेना, उसकी जगह तुझे आकुलता हो जाएगी। और बादाम पाक अच्छा होता तो फिर अकेला बादाम पाक ही खाना, दूसरा क्यों खाना, हाँ क्या हो जाएगा। वो तभी भी विज्ञान वाले ऐसे कहते हैं कि जो पेट में जो भी हजम करने की शक्ति है, जठराग्नि जितनी जिसको है उससे कोई अधिक डालता है पेट में तो क्या होता है इसका, उसका जहर हो जाता है, पॉइजन उसका जहर बनता है। और जहर से क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो वैसे भी वो कोई अच्छी चीज है ऐसा मानने में नहीं आया, जिसमें से जहर होवे वो अच्छी चीज है क्या। और यहाँ तो खाने के भाव में विभाव होता है, आकुलता होती है क्या। लोग कहते हैं कि हम अच्छी चीज खाते हैं तो हमको आनंद आता है, खुशी होती है, मजा आती है, और भगवान कहते हैं कि तुझे दुख होता है, क्या होता है, आकुलता होती है, दुख होता है, तूने दुख को सुख मान रखा है। और ऐसे मानने से कहीं भी दुख सुख होता नहीं, दुख पलट कर सुख हो जाएगा। पत्थर को हीरा मानने से पत्थर हीरा बन नहीं जाता, दुख को सुख मानने से दुख कोई सुख रूप पलट नहीं जाता, बन नहीं जाता, वो तो दुख ही रहेगा। तो यहाँ तो दुख से छुड़ाने का विषय चलता है, जो बात चलती है वो दुख से छुड़ाने की बात है। तो जिसको दुख से छूटना हो उनको ये भावेंद्रिय द्वारा, भावेंद्रिय के अवलंबन से रस लेने का छोड़ देना चाहिए। परिणाम अवलंबन बिना रहने वाला नहीं है। या तो जीव पर पदार्थ का अवलंबन ले या तो जीव स्वरूप का अवलंबन ले। तो तुम अपना स्वभाव का अवलंबन लो तो तुमको आनंद की, सुख की उत्पत्ति होगी। और ऐसे बाह्य परिणामों से तो, भावेंद्रियों के आलम्बन से तो दुख की ही उत्पत्ति होगी। तो ज्ञानियों को ऐसा होता है, कुछ बेंसरी का दृष्टांत है ना, 12 बजे और शाम को 5 बजे तो बोले खाने का समय हुआ है, आपको भोजन लेना है। बोलते कि ये हमेश की क्या कंटाला वाली बात है, बहुत कंटाला वो माता है। क्या है कि तुम खाने के लिए ढोल बजा रहे हैं, क्या पड़घम कहते हैं, पड़घम, ये तुम्हारे खाने का पड़घम बजा, क्या बोलते हैं, तुम खाने का पड़घम बजाते हो, मतलब ये पड़घम कान में कठोर लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे वो खाने को बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, ये तुम्हारा बजा खाने का पड़घम, फिर बैठ जावे, बैठना पड़ता है, तो क्या है कि उसमें दुख है, सुख नहीं है, खाने के परिणाम में भी आकुलता है। आप अपने शांत स्वभाव से उसका मुकाबला करें, उसकी बराबरी करें, तो अनाकुल स्वभाव के आगे वो खाने का विकल्प मंद विकल्प हो तो भी वो आकुलता लगे बिना रहने। चौथा हुआ, पांचवा, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, क्या स्वभाव है जीव का, कि समस्त विषयों में विशेष रूप नहीं है, एक सा रहता है, वेदन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी विषय हो सामने, जीव के सामने कोई भी विषय आओ, ज्ञान का वेदन एक सा ही रहता है, साधारण मैंने सामान, ज्ञान वेदन तो सामान्य ही परिणाम है ज्ञान का, समस्त विषयों के परिणाम विषयों से विशेषों में साधारण, ये स्वसंवेदन संवेदन परिणाम है, ज्ञान का वेदन है, वो ज्ञान सामान्य रूप है, वो यहाँ से निकलता है, क्या जो ज्ञान पर्याय में ज्ञान सामान्य है वो संवेदन रूप होता है, वो यहाँ से निकलता है, हर पांचवें बोल में से वो निकालेंगे आचार्य महाराज, कि सभी विषयों में भिन्न विभिन्नता है, विशेष है मैंने भिन्न भिन्नता है, उसमें साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, कि जीव को तो स्वसंवेदन ज्ञान का ही वेदन होता है, दूसरा किसी विषय को जीव वेदन में ले सकता नहीं है, विभिन्न विषयों को जीव वेद सकता नहीं, भोग सकता नहीं है, अपना साधारण ज्ञान वेदन ही रहता है, हर कितने भी समस्त विषयों में विशिष्टता कितनी भी हो, जीव का परिणाम तो संवेदन रूप रहना का है, साधारण मैंने एक रूप, एक सरीखा, सदृश रूप, असाधारण नहीं, साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है, क्योंकि वो रस वेदना परिणाम को पाता ही नहीं, वेदन है वो रस वेदना परिणाम को नहीं पाता, देखो सामान्य को लिया या विशेष को नहीं लिया, विशेष ज्ञान में रस का स्वाद मालूम पड़ जाता है, लेकिन विशेष का काम जानने का है, वेदने का नहीं है, और सामान्य का काम जानने का है, तो वो अपने को वेदने का है, वो अपने को वेदता है, और रस को किसी एक रस को या किसी एक विषय को वेदता नहीं है, दूसरे विषय को वेदन नहीं कर सकता। देखो ये जो है बात वो थोड़ी समझने लायक आई है, कि जीव का जो स्वभाव है वो संवेदन परिणाम रूप स्वभाव है, कैसे संवेदन परिणाम रूप स्वभाव है, कि साधारण संवेदन रूप परिणाम है, मैंने अपना सामान्य वेदन ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान वेदन ही रहे, ऐसा इनका स्वभाव है, समस्त विषयों के विशेषों में बाह्य में कुछ कुछ भी विषय संपर्क में आ जाओ, फिर भी वेदन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जानने में तो जैसा नहीं होगा ऐसा प्रतिभास आएगा, लेकिन वो प्रतिभास जानने तक रहता है, वेदन में वो प्रतिभास आता नहीं है। एक ही पर्याय में उतना फर्क है, ज्ञान के एक पर्याय में उतना अंतर है। वो केवल एक रसना वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए वो रस वेदना या किसी एक पुद्गल परिणाम के साथ वेदन होवे, उसका भेद भोगना हुए, ऐसा कभी बनता नहीं है। मैंने आत्मा कभी रस को वेदता ही नहीं, भोगता ही नहीं। अनंत काल में अनंत प्रकार के खाद्य पदार्थ को जाना है, सिर्फ भोगा नहीं है, वेदन में नहीं लिया, वेदन हो ही नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। आप ये कहेंगे कि हमको बहुत मीठा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, देखिए सहन नहीं हो सके उतना कड़वा होता है कोई। तो आत्मा को लगता है कि नहीं लगता है कि वास्तव में आत्मा को कुछ लगता नहीं, ये जानने का होता है। ऐसी बात है, वेदन हो ही नहीं सकता। क्या
जाना तो पर के अवलंबन से ही ना,
जानना तो क्या है कि पर के अवलंबन से भी जानता है मिथ्यात्व अवस्था में, और सम्यक्त्व अवस्था में पूरा पर का अवलंबन नहीं रहता, जितनी अस्थिरता है उतना रहता है, स्वावलंबन से भी जाना जाता है। और केवल ज्ञान में केवल परावलंबन का अभाव में पर को जाना जाता है, ऐसा है। जानने का तो जो है स्वपर प्रकाशकपणा, उसमें स्वभाव भी होता है, और पर के जानने में अवलंबन पर का जितना रहता है उतना विभाव भी ज्ञान का होता है, उसको परसत्ता अवलंबनशील ज्ञान कहने में आया है। हाँ, ज्ञान हो सकता है, शक्कर मीठी है और चिराता कड़वा है, ऐसा केवल ज्ञान में नहीं जान सकते क्या? हाँ, बिना इंद्रिय ज्ञान अतिंद्रिय ज्ञान में वो जान सकते क्या? नहीं जान सकते केवल ज्ञान, तो वहाँ अवलंबन नहीं है, फिर भी ज्ञान हो सकता है। लेकिन वेदन तो किसी को नहीं हो सकता, केवलियों को तो नहीं, साधक जीव को नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को भी नहीं, हो ही नहीं सकता, वो अशक्य है और असंभव है, ऐसा बन सकता नहीं। वो बराणु त्राणु चौराणु पिछाणु गाथा में वो बात कहेंगे कर्ता कर्म अधिकार में, कि जैसा शीत उष्ण रूप आत्मा नहीं हो सकता, वैसा भी कड़वा मीठा रूप आत्मा बनता नहीं। अगर ज्ञान को कड़वा लगता तो ज्ञान कड़वा हो जाता, और ज्ञान में मीठा लगता तो ज्ञान मीठा हो जाता। लेकिन ज्ञान निर्लेप स्वभावी है, कैसा है ज्ञान? मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान, सम्यक दृष्टि का उतना ही नहीं, मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान तो निर्लेप स्वभावी है, वो किसी स्वाद से लेपायमान होता नहीं। अगर लेपायमान होता तो वैसा ही रह जाता, दूसरा स्वाद कोई ले ही नहीं सकता, वही स्वाद ज्ञान में ज्ञान उस रूप हो जाता। लेकिन जैसा ज्ञान ठंडा गर्म नहीं होता, वैसा वो कड़वा मीठा भी नहीं होता। वेदे तो एक हो जाए, क्या वेदन करे तो एक हो जाए, जैसे कर्तापणे में एक हो जाता है, ऐसे भोक्तापणे में भी एक ही हो जाता है। इसलिए न कर सकता है न भोग सकता है, वहां तो अधिकार है कर्ता कर्म का। और समझाया है भोक्ता भोग्यपणा से समझाया है प्राण उत्तराण चौराणों में। देखो यहाँ जो बात चली वो वेदन की चली, पांचवें बुल में बात चली है वेदन की चली है कि जीव का स्वभाव उसमें क्या है कि स्वपर प्रकाशकपणा स्वभाव है, लेकिन पर का सन्मुख होना वो स्वभाव नहीं, पर का आलंबन लेना वो स्वभाव नहीं, पर का एकत्व करना वो स्वभाव नहीं। ज्ञान के तीन विभाव होते हैं, एक निर्ज्ञा एक शंकर दोष वाला है, जिसमें ज्ञान अपना एकत्व महसूस करता है कि मैं और खाद्य पदार्थ एक हो गया, मेरे में रस उतर गया। क्या खाते वक्त उसको क्या महसूस होता है कि ये मीठा रस मेरे में उतरता है, जैसे व्याप्ता है, तो मीठा अनुभव है। ऐसा एकत्व कभी होता नहीं, ज्ञान मीठा नहीं होता। दूसरा कि उसका अवलंबन लेकर जानना वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। और तीसरा ज्ञान का मुख परज्ञेय के प्रति होवे वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, स्वयं में रहे और अपनी निर्मलता के कारण अन्य द्रव्य का प्रतिभास आ जाए और जानने का हो जाए तो उसमें कोई विरोध और उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई विभाव नहीं है। ऐसी बात है, ये चौखी बात है, ये ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। तो ये बात तो जानने की हुई। हाँ, जो ज्ञान में एकत्व का अध्यास होता है उसको अध्यास कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, विभ्रम कहते हैं, कि मैं और पर पदार्थ जो जानने में आया वो एक मेक हो गया। जैसे ठंडी मेरे में आ गई, मुझे सर्दी लग गई तो मुझे ठंडी मेरे में आ गई, ये मिथ्या आभास है। ज्ञान ठंडा होता नहीं, ज्ञान मीठा होता नहीं। तो ये एकत्व रूप अध्यास है, उसको शास्त्र भाषा में ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष कहने में आया है। 31 का था समय सार के। दूसरा विभाव वो है कि सम्यक ज्ञान होने पर भी जितना उपयोग पर पदार्थ के प्रति झुकता है उसको परसत्ता अवलंबनशील ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान का विभाव है, इससे धर्म का साधन नहीं होता। वो कल आया ने कि गणधर देव को 12 अंग का ज्ञान परसत्ता अवलंबनशील ज्ञान है, इससे मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई धर्मात्मा परसत्तावलंबनशील ज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है या आत्महित तो होता है ऐसा कहेंगे नहीं। और तीसरी चंचलता जो है उपयोग की, भले ही सामने कोई नोकर्म नहीं होवे, शुक्ल ध्यान होवे, फिर भी परिणाम के उपयोग की चंचलता रहवे, ए बुद्धिपूर्वक भी रह जावे या बुद्धिपूर्वक भी सूक्ष्म हो जावे और उपयोग स्वरूप में पूर्ण नहीं लगे, कुछ च्युती होवे, साधक को भी चंचलता रह जावे, वो पर सन्मुखता है, पर सन्मुख होकर पर का ज्ञान करना वो स्वभाव नहीं है ज्ञान का। स्वयं में रह करके स्वपर प्रकाशक पने ज्ञान होवे तो वो ज्ञान निर्दोष है, चाहे साधक का हो जितने अंश में, चाहे केवली को हो पूर्ण अंश में, वो स्वभाव ज्ञान है, उसमें कोई अपराध नहीं, कोई बाधा नहीं होती। ये बात है, ये ज्ञान के तीन प्रकार के विभाग समझना। उसमें परसत्ता अवलंबन में क्या है कि कोई न कोई बुद्धिपूर्वक पर पदार्थ में वो झुकता है, पर पदार्थ में उपयोग जाता है और झुकता है। और ध्यान में तो कोई पर पदार्थ में उपयोग लगाने का सवाल नहीं, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, फिर भी नप्ति परिवर्तन क्रिया वहाँ रहती है, एक ज्ञेय से दूसरा ज्ञेय पर चंचलता से चला जाना, अपने एक स्वरूप स्वग्नि में स्थिर नहीं रहना, द्रव गुण पर्याय का भी भेद उठना उसमें, अपना मैं व अपने में, तो वहां पर सत्ता तो है ही नहीं लेकिन चंचलता है, तो उतनी परसन्मुखता है, स्वसन्मुखता नहीं रही उतनी, उतने अंश में परसन्मुखता है, वो उतना दोष है ज्ञान में। केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता, वो संपूर्ण स्थिर होता है स्वरूप में पूर्ण रूपे। हाँ, उसको गपनप्ति परिवर्तन क्रिया बोला है प्रवचन सार में, तो वहाँ उपयोग उतना बदलता रहता है, ज्ञे से ज्ञान्तर, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, ऐसा होता है। हाँ, अभिधि पूर्वक उपयोग तो शुक्ल ध्यान है, आत्मा में लगा है, लेकिन ऐसा परिणाम में कुछ अंश में च्युति है, तो वो च्युति चंचलता है, उतनी परसन्मुखता है। मैंने एक पहलू में, पहलू दो है, परावलंबन और परसन्मुखता, ऐसे दो पहलू है, मोटे रूप में एक लगे लेकिन सूक्ष्मता से उसके दो पहलू है। छठा, उसे मेरे आत्मा को समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है। क्या समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होना ये कोई विभाव नहीं है? क्या ये प्रकार, तीन प्रकार का विभाव है, लेकिन ज्ञान होना वो कोई विभाव नहीं है, ज्ञेयों का ज्ञान होना वो कोई विभाव नहीं है, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में तो कोई ज्ञेय बाकी नहीं रहता, लोकालोक प्रतिभास होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म का निषेध होने से किसी के साथ एक रूपता नहीं होती, तादात्मपणा नहीं होता। निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी, क्या रस का ज्ञान आत्मा को होवे ही नहीं, वो कहने का अभिप्राय नहीं है। सभी रस को जान लेवे, समस्त रस को केवल ज्ञान जान लेवे, उसको रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर, वो विशेष अंश में, वेदन में नहीं, वेदन में तो एक साधारण वेदन रहता है, ज्ञान सामान्य में तो वेदन रहता है, ज्ञान विशेष में अनेक प्रकार के रस के ज्ञान होते हुए भी, रस के ज्ञान रूप में परिणमित होते होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, वो विशेष वाला अंश भी रस रूप होता नहीं है, वो अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। इसलिए ए रस है, आत्मा रस वाला नहीं है, रस बिना का है। देखो एक रस में से कितना सूक्ष्म छह बोल निकाला, इसलिए इतनी सूक्ष्मता लिए है आचार्य महाराज ने कि जीव अनादि से इंद्रिय ज्ञान में और पर पदार्थ में उतना एकत्व को तीव्र रूप से प्राप्त हुआ है कि उसका वो मिथ्या ज्ञान छूटने का बहुत कठिन हो रहा है। तो इसकी जो जड़ है ना, ये अज्ञान की जो जड़ है वो भीतर में कहाँ तक है कि जहां तक इसकी जड़ है वो जड़ से काटते हैं अज्ञान को, यहाँ जड़ से काट देते हैं कि फिर कभी अनंत काल में जीव को अज्ञान होवे ही नहीं, ऐसा बना देते हैं। इसलिए वो अज्ञान का मूल जितना ऊंडा है उतनी गहराई में जाकर के बात को साफ करते हैं कि देखिए तेरा स्वरूप कैसा है, तेरा स्वरूप को अच्छी तरह समझ तो फिर तुझे अज्ञान होने वाला नहीं है। जो अज्ञान अनंत जन्म मरण का परिभ्रमण का कारण है उसको नाश करने के लिए आचार्य महाराज ने परम कारुण्य वृत्ति से इतना परिश्रम लिया है, वरना जंगल में उनको क्या है, लोगों पर, जगत के जीवों पर बहुत करुणा आई, कैसे अज्ञान में वो डूब गए हैं, तो वो कितने भी डूबे हैं उनको निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं कि तुम तिर जाओ, तिरना तेरा स्वभाव है, डूबना तेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार छह तरह के रस के निषेध से वह अरस है, वह मैंने आत्मा अपना स्वरूप है, वो अरस है, उसमें रस का नाम निशान गंध छाया मात्र भी नहीं है, ऐसा लेना। ज्ञान स्वरूप ही है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा लेना।
वासुदेव सिद्ध मंदिर भगवान जय हो।